हरे कृष्ण। आज का श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के और 8वां अध्याय है, जिसमें प्रसंग चल रहा है क्षीर सागर का मंथन। तो इसमें लास्ट जो श्लोक हुआ था वो श्लोक संख्या 2 हुई थी, और उसके बाद श्लोक 3 से लेके 8वें तक कोई तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद का। 8वें श्लोक में तात्पर्य है और हम 8वें श्लोक में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जितने भी श्लोक हैं 3 से लेकर 8 तक हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। श्लोक संख्या 4। मंथन के फल स्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मार दे रहा था। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें रावण प्रमुख था। अब्रह्मो आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। श्लोक संख्या 6। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। श्लोक संख्या 7। अप्सराएं जो स्वर्ग में वैश्या की तरह रहती हैं प्रकट हुई। वह सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षण वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। अब आज 8वां श्लोक जो बोर्ड पे लिखा है तो इसको हम दोहराएंगे। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विदुत सोदा मनी यथा। हरे कृष्ण। इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। तथा तत्पश्चात च तथा आविर्भूत प्रकट हुई साक्षात प्रत्यक्ष श्री धन की देवी रमा नामक भगवत परा भगवान के प्रति पूर्णतः अनुरक्त रंजयन्ती प्रकाशित करती हैं दिशा सभी दिशाओं को कांत्या कांति से विद्युत बिजली सोदा मनी यथा जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वह बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तात्पर्य श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। यह विश्व शांति का गुरु भगवद गीता में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृद हैं, तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश बद्ध जी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ब्रह्म में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग होती है। शांति के लिए पहली शर्त है कि श्री या धन की देवी रमा द्वारा प्रदत्त सारी संपदा भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वह संसारी संपदा के अपने झूठे स्वामित्व को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही शिक्षा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामेयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्यत देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है आठवां। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से, दरअसल आज फर्स्ट टाइम में यहाँ भागवत कक्षा के लिए मुझे बताएगा मुझे सेवा देंगी, तो सभी जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं या इक्वल जितने भी हैं और जितने भी साथ के भक्त हैं नीचे जूनियर भक्त हैं, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस विषय में कुछ बोल सकूँ, और खासकर इस गृह राम राघव जी से, श्याम कृष्ण जी से, और इस गृह शुक्ल कृष्ण जी से, इस गृह मुरली कृष्ण जी से, इस गृह कृष्ण जी से, सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें। और कुछ अगर मेरे से त्रुटि हो या कुछ ज़्यादा बोल दूँ तो उसके लिए क्षमा कीजिए। और तो ये श्लोक है आज का, जैसे हम क्षीर सागर के मंथन में देखते हैं तरह तरह की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, होंगी आगे भी। तो ये जो इन चार पांच श्लोकों में जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, सबसे पहले तो श्वेत रंग का उच्चिष्टवा घोड़ा, और फिर बाद में हाथियों का राजा एरावत, उसके बाद में अब्रह्मो द्वारा उत्पन्न हुई आठ अब्रह्मो आदि आठ हाथनियाँ उत्पन्न हुई, फिर कौस्तु मणि, फिर पद्मराग मणि, और फिर पारिजात पुष्प, और फिर वैश्याएँ उत्पन्न होती हैं जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, और उसके बाद आठवां जो प्रोडक्ट जो निकलते हैं वो श्री लक्ष्मी जी। तो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे प्रभु जी, जिसके जगन्नाथ प्रिय प्रभु, इसी लेक्चर में बता रहे थे कि जो परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कुछ ऐसे नहीं कि कुछ प्री प्लान था और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, नहीं, जैसे जैसे उनका क्वेश्चन मन में उठता था कि किसी कुछ कंफ्यूजन है कुछ है तो वो पूछ लेते थे। पर सुखदेव गोस्वामी ने इतने अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही सुंदरता से। अभी जैसे हम देखते हैं कि इस श्लोक का जो इस जो समुद्र मंथन का आठवां प्रोडक्ट है वो लक्ष्मी जी है और वह अष्टलक्ष्मी भी कहलाती है। और जैसे हम देखते हैं कि इस ये कैंटो का नाम जो स्कंध है वो एट्थ कैंटो है, एट्थ चैप्टर है और एट्थ नंबर वर्स है। तो इस स्पेशलिटी जो सुखदेव का स्वामी जी की कि वो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं और है भी, पर वक्त लोग उसमें करेंगे। हरे कृष्ण। तो इसमें जैसे लक्ष्मी जी की दो सुंदरताओं का वर्णन हो रहा है, एक तो ये कि उनका बाहरी कांति और दूसरा जो उनकी अंदर आंतरिक जो उनकी सुंदरता है, उन दो सुंदरताओं के बारे में चर्चा हुई यहाँ पे। जैसे पहली सुंदरता तो ये है कि भगवान जो श्री लक्ष्मी जी हैं वो भगवत पर हैं, ये इनकी आंतरिक सुंदरता है कि वो भगवान के प्रति पूर्णतया अनुरक्त रहते हैं। और दूसरी उनकी सुंदरता है कि वो संगमरमर पे जो बिजली पड़ती है, जब वो बिजली पड़ती है तो उस बिजली की जो ब्यूटी है, चमक है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब संगमरमर पत्थर पर पड़ती है, सोदा मैंने जैसे बताया गया यहाँ पर। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उस चमक को भी वो मात कर रहे थे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने भी बड़ा अच्छा तात्पर्य बताया है कि शांति के लिए पहली शर्त है कि श्री तथा धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा भगवान को अर्पित की जाए। और खासकर भगवत परा शब्द जो इसमें हमें लग रहा है कि श्री रमा भगवत परा, जो कि पूर्णतः भगवान के प्रति अनुरक्त रहती है। श्री प्रभुपाद इसके नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कि भगवत परा का शब्द क्या सूचित करता है। वह बताते हैं भगवत परा शब्द से सूचित होता है वह भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा भोग्या है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वह स्वभाव से भगवत परा है। और फिर बता रहे हैं जो भी भक्त सदैव नारायण की सेवा में लग रहते हैं उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो हम जैसे देखते हैं कि जो धन की देवी लक्ष्मी जी हैं उनका स्वभाव है भगवत परा, भगवान के प्रति पूर्णतः अनुरक्त। पर आजकल के समाज में हम देखते हैं कि हर कोई जैसे लक्ष्मी जी को अलग से पूजना, अलग से भगवान नारायण के साथ ही अलग से पूजने का प्रयास करता है और उनसे धन की कामना करता है। तो इस भगवत परा शब्द से हम ये सीखने को मिलते कि जो लक्ष्मी जी है हमेशा ही भगवान के प्रति अनुरक्त रहती है और जो भगवान से हटकर उनको पूजते हैं तो उनका एक नाम चंचला भी है। चंचला भी वो कुछ समय के लिए रहती है, बाद में चली जाती है। और बताया जाता है जो लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठ के आती हैं और उस व्यक्ति को उल्लू बना के चली जाती हैं। तो ये लक्ष्मी जी का। पर जो व्यक्ति नारायण की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसके साथ लक्ष्मी जी पूर्णतः रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इसमें इसके नेक्स्ट वर्ष के तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नारायण की पूजा करता है उसमें लक्ष्मी जी अपनी कृपा करती हैं। तो हम जैसे संसार में भी देखते हैं कि लक्ष्मी जी कृपा के क्या सोचते हैं आजकल, जैसे हम किस प्रकार से लेते हैं कि लक्ष्मी जी कृपा किस पे हुई, कैसे पहचाना जाएगा? जो बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति है या बहुत ऑपुलेंस है उसके पास, तो ये बताया जाएगा कि हाँ इसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है। कोई भी व्यक्ति ऐसे सोचेगा इसके ऊपर तो धन की देवी की बहुत कृपा है। तो पर यहाँ भगवान कह रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी उन्हीं पे कृपा करती हैं जो भगवत पर है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस संसार में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं भी करते तब भी बहुत अमीर है। हो सकता है वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हों, नास्तिक हों, फिर भी वो देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। अमीर है या धनी है, तो हम कैसे समझे कि उन पे लक्ष्मी जी की कृपा है? हमें कैसे समझे कि उनके उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, हालांकि वो नास्तिक हैं, भगवान की पूजा नहीं भी कर रहे, फिर भी जो लक्ष्मी जी हैं, यानी कि धन उनके पास बहुत है, बहुत अपलेंसेस है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी का मतलब क्या है। लक्ष्मी का बताया जाता है कि लक्ष्मी दो प्रकार से, एक छाया लक्ष्मी और दूसरी जो वास्तविक लक्ष्मी है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के पाश्रम में भी हम जैसे वो साउथ इंडिया गए थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण था रामदास करके, तो जब उसने पाश्रम में पढ़ा कि रावण सीता को हर ले गया, तो जब उस पाश्रम को पढ़ा तो उसको बहुत दुख हुआ कि रावण सीता को हर ले गया, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, भगवान की जो वाइफ है उनको हर ले गया, तो भगवान तो बहुत दुखी है। रामदास कहता है कि भगवान के भक्त है, तो वो भी दुखी हो गए बहुत। तो उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया, पूरा दिन फास्ट रखा हुआ था, काफी समय से फास्ट रखा हुआ था उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने जाके देखा, तो देखा कि वो बहुत भक्त दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया उनको कि दरअसल किसी कूर्म पुराण से शायद बता दे कि कूर्म पुराण से बताया था कि जो सीता को लेके गया है रावण, वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। तो इसी से हम ये समझते हैं कि जैसे छाया सीता है, यानी कि सीता जी लक्ष्मी जी और छाया सीता और छाया लक्ष्मी, तो हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की सीता है, दो प्रकार की लक्ष्मी है, एक है वास्तविक लक्ष्मी, एक है छाया लक्ष्मी। हो सकता है इस भौतिक जगत में बहुत सारे व्यक्तियों के पास, ऐसे व्यक्तियों के पास भी बहुत धन हो जो नास्तिक है, फिर भी उनके पास मुख्य चीज यानी कि लक्ष्मी नहीं रहती। हो सकता है धन हो पर लक्ष्मी नहीं रहती। जो छाया लक्ष्मी है वो क्या क्या देती हैं? धन और अपुलेंसी, जितने भी ऐश्वर्य हैं वो प्रदान करती हैं। पर जो वास्तविक लक्ष्मी है वो क्या देती हैं? वो देती है सुख संपत्ति, सुख शांति और संतुष्टता। ये मुख्य उनका जो जो प्रोडक्ट है वो देती है अपने भक्तों को। हो सकता है उनके पास भौतिकतावादी लोगों के पास बहुत सारा धन हो, पर वो उनके पास मुख्य चीज नहीं होती, क्या? संतुष्टता नहीं होती। जैसे चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि असली धनी व्यक्ति वही है जो संतुष्ट रहता है। जो संतुष्ट नहीं है उसके धन का क्या लाभ? तो ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो हम शास्त्रों में भी देखते हैं, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे भक्तों के उदाहरण भी हैं कि किस पे वास्तविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। बाहरी दृष्टि से जो हम सुदामा ब्राह्मण की कथा में देखते हैं कि सुदामा ब्राह्मण बाहरी दृष्टि से बहुत ही गरीब थे, और पर क्या था उनके पास? असली धन था संतुष्ट, शांत थे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनका मन शांत था और वो पूरी तरह से इंद्रियों को वश में रख करके रखते थे और भगवान की सेवा करते थे। हालांकि एक्सटर्नल लोग से इनके पास धन नहीं है, कोई भी कहेगा, कोई भी देखेगा कहेगा इसमें लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, पर वास्तविक जो लक्ष्मी है उनकी उन पर कृपा है। और इसी प्रकार से हम आगे और भी जैसे उदाहरण, जैसे खोला विचय श्रीधर, तो खोला विचय श्रीधर उनका जो पोजिशन था इस प्रकार से था कि उनके पास एक ही धोती होती थी और उसमें भी 22 छेद होते थे, और उनका जो बिजनेस था वो 2 पैसे का बिजनेस होता था और उसमें जो प्रॉफिट होता था 2 पैसा होता था, और उसमें भी वो 1 पैसा गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। और बताया जाता है उनके पास एक लोटा था जो कि चोर भी चोरी नहीं करता था, और उनके जो घर की छत थी वो नहीं होती थी, बिना छत के रहते थे। तो इस प्रकार से जो खोला विचय श्रीधर है, हालांकि एक्सटर्नल लोग से बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं उनके पास, कुछ भी धन संपत्ति नहीं, लक्ष्मी जी नहीं, पर वास्तव में लक्ष्मी जी उनके पास है। इस प्रकार से जो वो हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण में, भगवान की सेवा में, भगवान से हास प्रयास करने में आनंद लेते थे और वो संतुष्ट रहते थे। जब पड़ोसी उनको देखते थे कि रात को वो खूब हरे कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं और रो रहे हैं, तो पड़ोसियों को लगता था कि ये जो है इसको भूख सता रही है, ये बहुत गरीब व्यक्ति है, इसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो इसको चलो कुछ दे आते हैं जिससे ये अपनी भूख मिटाए और चुप करके सोए। पर ये उनका वास्तविक एंग्जाइटी नहीं था, एंग्जाइटी उनका वास्तव में ये था कि हरे कृष्ण नाम के कीर्तन में वो खूब आनंद प्राप्त कर रहे थे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुलाशव, राजा बहुलाशव जो कि श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में 86 चैप्टर में उनकी कथा आती है कि राजा बहुलाशव और ब्राह्मण शुद्धदेव, गरीब ब्राह्मण शुद्धदेव, ये दोनों के दोनों भगवान के भक्त हैं, परंतु एक राजा जो कि एक्सट्रीम रूप से खूब धनी था और एक ब्राह्मण जो जो कि शुद्ध थे वो बहुत गरीब थे। बताया गया कि इसमें जब वो जब भगवान कृष्ण और उनके संगीगण जैसे खासकर जैसे सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव, जितने भी ऋषि मुनि, इन दोनों के घर में पधारे गए और राजा बहुलाशव ने भी खूब पूरे हृदय से हर प्रकार की सुविधाओं के साथ, हर प्रकार के जो अपनी पूरी शक्ति से उनकी सेवा की। और इसी प्रकार से फिर ब्राह्मण ने भी पूरी अपनी शक्ति के साथ उनकी सेवा की, तो भगवान दोनों से ही प्रसन्न थे। ऐसा नहीं था कि भगवान राजा बहुलाशव से ज्यादा प्रसन्न हो क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से सेवा की, अच्छे खाने को दिया, अच्छा स्वागत किया, और ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। जब भगवान गए तो ब्राह्मण ने देखा, शुद्धदेव ने देखा कि भगवान और उनके संगीगण आ रहे हैं, तो वो बता के नाचने लगे और अपना जो गमछा था उसको ऐसे घुमाने लगे कि बहुत खुशी की बात है, आज भगवान मेरे घर में आए। और पूरे हृदय से उन्होंने पूरी शक्ति के साथ जितना भी समर्थ था उन्होंने किया। बता के कि जब वो चटाई लेने गए, चटाई बिछाई उन्होंने, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि शुद्धदेव के पास कुछ बहुत ज्यादा चटाइयां नहीं थी, तो उन्होंने कुछ साथ वाले पड़ोसी से मांगकर चटाइयां लाए और सभी के लिए चटाइयां बिछाई। फिर भी भगवान के, इससे हम ये देखते हैं कि भगवान चाहे बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हो चाहे बहुत ज्यादा गरीब हो, अगर भगवान का भक्त है तो भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार से श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं का, अगर लक्ष्मी जी को भी अगर भीख मांगनी पड़े आपके लिए तो क्या होगा, वो भीख मांगेगी पर आपके घर में कुछ कमी नहीं आएगी। तो इन चार पांच उदाहरणों से हम ये देखते हैं कि जो वास्तविक लक्ष्मी की कृपा जो है वो क्या है। वास्तविक लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो केवल धन नहीं है या ऑपुलेंस नहीं है, वास्तविक जो लक्ष्मी की कृपा ये है कि वो भगवान की भक्ति देती है हमको। और असली व्यक्ति संतुष्ट वही रह पाता है जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। अब जिस प्रकार से मछली है और उसको पानी से बाहर कर दिया जाए तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगी, परंतु अगर उसको पानी में डाल दिया जाए खुश रहेगी। इसी प्रकार से जीवात्मा, उसको जितने भी भौतिक ऐश्वर्य दे दो, भौतिक सुविधाएं दे दो, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। वो खुश तभी रहेगा क्योंकि जब वो भगवान की सेवा में लगेगा, क्योंकि वो स्वरूप से आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक जब वो भगवान की सेवा में लगता है तो वो संतुष्टता प्राप्त कर पाता है। तो इस जो तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते, शांति के लिए पहली शर्त है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वह संसारी संपदा के लिए कि अपने झूठे स्वामित्व को त्याग दें और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करें। कृष्ण भावना आंदोलन की यही शिक्षा। तो आप वापस कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि धन की देवी जो लक्ष्मी द्वारा जितनी भी प्रदत्त हमारे संपदा है उसको सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वही को प्रश्न पूछ सकता है क्यों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, पर यहाँ पर बता रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वो सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है असली और सभी लोगों के महेश्वर है। ऐसे ही अन्य श्लोकों में हम देखते हैं जैसे भगवद गीता में भगवान ने बोले कि अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। के ये जो भौतिक और आध्यात्मिक जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे मेरी ही सृष्टि है, मैं ही इनका मालिक हूं और ये सब चीजें जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी के सभी मुझसे ही उत्पन्न हुई है। तो जो व्यक्ति ये जानता है वह भली भांति ये जान लेता है वो मेरी पूरी तरह से हृदय से सेवा करता है। और फिर एक श्लोक में बताते भगवान अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता रे प्रभु रे विचार। तो अलग अलग श्लोक से हमें ये पता चलता है और अन्य शास्त्रों में भी ऐसे बहुत सारे वर्सेज हैं जिसमें भगवान की प्रभुत्वता स्थापित होती है। तो हमें क्यों उनकी इस प्रकार से क्यों हमें उनको समर्पित करना चाहिए इसे बताया गया, हमें ही बेनिफिट मिलते हैं। तो एक जैसे मैंने सुदामा ब्राह्मण की एक कथा बताई आपको, तो उसी में आगे जब भगवान ने देखा कि कुछ ये ब्राह्मण कुछ मेरे लिए उपहार लाया तो पूछते हैं कि क्या लाया मेरे लिए, तो फिर वो देख लेते हैं कि वो ब्राह्मण कुछ मेरे लिए उपहार लाया। तो भगवान क्या करते हैं, हालांकि वो ब्राह्मण जो सुदामा ब्राह्मण थे उसको थोड़ा संकुचा रहे थे और वो देने नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि बहुत सूखे चावल थे चिवड़ा था, तो भगवान ने जबरदस्ती छीन लिया और एक मुट्ठी भर के खा लिया। और फिर जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगे उसी समय रुक्मिणी जी ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ लिया। तो महानाचार्य श्रील श्रीधर स्वामी इस श्लोक के जो तात्पर्य बताते हैं कि जो लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी हैं उन्होंने क्यों खाने से पकड़ लिया दूसरा हाथ बताएं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार इस संकेत द्वारा मैं भगवान को बता देना चाहती थी कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है, या आपने जो एक चावल एक मुट्ठी भर चावल आपने जो खा लिया है आपने ये खाया है इस बस इतनी सी कृपा से उस व्यक्ति को जिसने आपकी सेवा की है उसको इतना धन प्राप्त हो सकता है अथाह धन कि वो सागर मिल सकता है उसको। क्यों, क्योंकि जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है, रुक्मिणी जी कह रहे हैं जो कि लक्ष्मी जी हैं कि जो कि मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है, फिर बता रहे हैं लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य ना करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े कि अगर आप दूसरी मुट्ठी भी खा लोगे तो क्या होगा, फिर मेरे को इसका इन जो ब्राह्मण की जिसका आपने स्वीकार किया है इसका दासी बनना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने मुट्ठी रोक ली। फिर शिल प्रभुपाद उसी में अपनी शिल प्रभुपाद की भी टीका है, शिल प्रभुपाद की टीका है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वह प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं तो रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो उठती है कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उसके घर की अतिथि बनती है, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। तो इसमें दो चीजें कि एक तो भक्त को चाहिए कि वो भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण करे और दूसरा अगर भगवान ने स्वीकार कर लिया उस भोग को तो क्या होता है, फिर लक्ष्मी जी क्या करती है उसको बता रहे कि उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उन्हें विश्व का सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। तो दोनों प्रकार से, ऐसा नहीं कि भगवान अपने भक्तों को केवल गरीबी छोड़ते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं 10th कैंटो में कि विष्णु के भक्त तो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा धनवान नहीं होते, बहुत उनके पास ऑपुलेंस नहीं होता, परंतु शिव जी के भक्त उनके पास तो बहुत ऑपुलेंस होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। तो बहुत धनवान होते हैं पर जो कृष्ण के भक्त हैं वो धनवान नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो अपने भक्तों को केवल गरीब अवस्था में रखते हैं, नहीं, वो उनकी परिस्थितियां देखते हैं कि कैसी परिस्थितियां। जो बताया गया कि सबसे पहली जो कृपा ये करते हैं कि यस्य अनुग्रहं गृह्णामि हरिष्यत धनं फिर, कि सबसे पहली जो कृपा मैं करता हूँ अपने भक्त का, जो उसका जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है उसका धन छीन लेता हूँ। धन इसलिए छीनते हैं क्योंकि इसका अहंकार काटने के लिए। तो पर भगवान ऐसा नहीं कि केवल भक्तों गरीबी छोड़ते हैं, भगवान भक्तों को धन भी देते हैं। जैसे हम महाराज अम्बरीश के उदाहरण से, युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से, काफी सारे भक्त भगवान कृष्ण के ऐसे हैं कि जो बहुत सारे बहुत धनवान भी हैं, सारे सृष्टि के सम्राट थे परीक्षित महाराज, तो उनको देते हैं इसको जो उनकी सेवा में लगा सके और उनको धन, उस धन को प्राप्त होने के बाद भी उनको भूले ना। क्योंकि क्या होता है कि धन जैसे ही व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति थोड़ा विचलित हो जाता है और गर्वित हो जाता है, और भगवान की जो कृपा है उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता। उसको ये लगता है कि ये जो सारी वस्तुएं जो है, ये सारी की सारी मैं अपने प्रयासों से या अपने धन से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बचपन में एक फिल्म देखा था, उसमें धन के ऊपर ही थी पूरी स्टोरी। तो एक लेडीज थी, वो धन के प्रति बहुत गर्व रखती थी, और उसमें उन्हीं का पुत्र कहता है कि धन से मां नहीं खरीदी जाती। तो ये उस फिल्म का जो एक ये था कि धन से मां नहीं खरीदी जा सकती। तो इसी प्रकार से धन से सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हो सकता है व्यक्ति के पास धन हो, सुविधाएं हो, अपलायंस हो, पर उसमें उसके पास सुख शांति और संतुष्टता नहीं होगी। तो दूसरी तरफ ये कि जिस पे लक्ष्मी जी की कृपा है वो क्या है, संतुष्ट रहता है, शांत रहता है। और एक बार मैं इसी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए इस श्लोक पे लेक्चर पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद का, तो उसमें भोक्ता नाम एक तपसाम पे प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, उसको $100 का नोट मिला, उसने क्या किया, तीन प्रकार की इसमें मानसिकता बता रहे हैं कि उसने क्या किया, उठाया और भोग करने के लिए उसका भोग किया। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं ये इलीगल है कि उसको रास्ते में कुछ धन मिला और उसने अपने भोग के लिए यूज कर लिया, ये इलीगल है। पर दूसरा कि एक व्यक्ति ने देखा कि $100 का नोट पड़ा हुआ है, पर उसने कहा कि ये मेरा धन नहीं है, मैं चला जाता हूँ। जैसे मायावादी वगैरह कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है तो इसमें हमें ये मिथ्या है, इससे कुछ नहीं लेन देना, हमें सीधा भगवान जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहीं सोचते हैं, चलो ये धन है ये मेरे भोग के लिए नहीं है, या मेरा धन नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं स्वीकार करता। पर तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उस $100 के नोट को उठाता है और वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसका ये $100 का नोट गुमा है, उसको ढूंढता है और उसको वो देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सही सेवा कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो उस इन तीनों में से एक तो भोगी है और दूसरा त्यागी है, और जो तीसरा है वो वास्तविक सेवा कर रहा है कि उस धन को उस व्यक्ति के पास पहुंचा रहा है जो उस व्यक्ति का धन, जिस व्यक्ति का वो धन है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारी की सारी सृष्टि जो जितने भी है ये सारी की सारी भगवान की है। जैसे हमने काफी सारे श्लोकों में पढ़ा कि अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वं परिवर्तिते, तो क्या है कि भगवान ही सारी सृष्टि के मालिक है। तो असली बुद्धिमान व्यक्ति वही है और जो असली सेवा वही कर रहे हैं जो सही स्वामी के पास उस वस्तु को दे रहे हैं जिसकी वो है। और श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक में एक स्टोरी भी सुनाते हैं। एक कारपेंटर होता है, उसको मालिक क्या करता है, टेबल बनाने के लिए लकड़ी भी देता है, सब सामान देता है, और कारपेंटर क्या करता है उसको बनाता है और कहता है कि मैं अब इसका मालिक हूँ, ये मेरी वस्तु है, मैं क्योंकि मैंने बनाई है ये मेरी वस्तु है। तो क्या वो व्यक्ति मालिक है, वो व्यक्ति स्वामी है उस व्यक्ति उस वस्तु का जिसने वो बनाई? तो कारपेंटर स्वामी नहीं होता, असली स्वामी वही होता है जो जिसने उसको सामान दिया, प्रॉपर दिया। तो इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि, सारी की सारी जो संपदा है, सारी सृष्टि भगवान ने दी है, इसी को क्या करते हैं मनुष्य, कुछ कुछ चेंज करके, कुछ कुछ बना के वो कहता है अब मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ इसका। जैसे प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह सारी संपदा के अपने झूठे स्वामित्व को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। तो जो अपना झूठा स्वामित्व है उसको त्याग दे। तो एक बार मायापुर में जयप्रता का स्वामी महाराज एक व्यक्ति को, लाइफ मेंबर को प्रभुपाद से मिलाने के लिए लाते हैं। तो प्रभुपाद से जब मिलते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप क्या बिजनेस करते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एक ग्लास कंपनी का, जो ग्लास का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं उसका मालिक हूँ उस कंपनी का। तो प्रभुपाद ने कहा कि ग्लास किससे बनता है? तो उन्होंने कहा सिलिकॉन। तो प्रभुपाद ने कहा सैंड, रेत से बनता है। तो प्रभुपाद ने कहा रेत कहाँ से आई? तो कह रहा कि रेत भगवान के द्वारा दी गई है। तो प्रभुपाद कहते हैं तो यानी कि आप भगवान की संपत्ति चुरा रहे हो। तो उसको थोड़ा सा, उस व्यक्ति को धक्का लगता है, थोड़ा सोचता है, फिर वो कहता है नहीं प्रभुपाद, मैं भगवान की संपत्ति नहीं चुरा रहा, मैं भगवान को ये कुछ डोनेशन भी देता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप छोटे चोर, पहले वो कहते कि आप चोर हो, फिर कहते कि आप छोटे चोर हो, अगर आप भगवान की संपत्ति को ही कुछ अंश अगर आप दे रहे हो, अगर हम सारी की सारी संपत्ति अगर हम अपने यूज के लिए कर रहे हैं, बताया जाता अपनी इंद्रतृप्ति के लिए करते हैं, तो एक चोर के समान है। जैसे प्रभुपाद भगवद गीता के तीसरे अध्याय के एक श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य ये जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वह नहीं बना सकते। क्या क्या जीवन की आवश्यकता है? अन्न है, या दूध है, या चीनी है, किसी प्रकार से, इस प्रकार से जितनी वस्तुएं हैं, जैसे अगर मान लिया जाए अगर हम ट्रैवलिंग भी करते हैं, पेट्रोल है, तो पेट्रोल मनुष्य नहीं बना सकता। तो सारी की सारी संपदा भगवान की है, भगवान के द्वारा दी गई है, पर उसको जो व्यक्ति अपनी यूज के लिए, अपनी इंद्रतृप्ति के लिए यूज के लिए करता है, यूज करता है, तो वो व्यक्ति चोर कहलाता है। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? जितनी भी संपदा है भगवान के द्वारा दी गई, उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो एक प्रश्न उठ सकता है इस प्रकार से, मैं सोच रहा था कि क्या जो भक्तों को भगवान से धन मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, इस प्रकार से सोच रहा था क्या। तो हम ऐसे चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जो परम भक्त के अवतार में यहाँ पे प्रकट हुए, स्वयं भगवान कृष्ण ही है पर भक्त के अवतार में प्रकट हुए, क्या कहते हैं? ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। तो उनकी जो क्या आशा है कि ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना सुंदरी, केवल क्या चाहिए? भवतादि भक्ति रहित की तरह, कि शुद्ध, आपकी केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। तो भक्तों को केवल भगवान की शुद्ध भक्ति को ही मांगना चाहिए। और जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो क्या होता है, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि जहां भगवान रहते हैं माँ लक्ष्मी जी रहती हैं। तो लक्ष्मी जी का अर्थ क्या है? जब जरूरत होती है, भगवान देखते हैं कि जब जरूरत है भक्त को प्रचार के लिए या उनकी सेवा के लिए आवश्यकता है, तो भगवान धन भी देते हैं। नहीं तो असली लक्ष्मी तो उनके पास रहती है, चाहे धन हो या ना हो, असली सुख जो सुख संतुष्टता शांति संपन्नता ये सब भक्तों के पास रहता ही है। और दूसरे भक्तों का धन है क्या? तो भक्तों का धन क्या है कि भक्तों का धन है केवल सेवा करना भगवान की, भगवान के भक्तों की। और गोलोक के लिए प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो गोलोक का प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन है, उसको करना चाहिए। उस धन को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने बैंक अकाउंट में, जैसे कहते हैं ना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते हैं लोग, तो जो असली बैंक बैलेंस है हमारा आध्यात्मिक, जो उस बैंक को खाता भरते रहना चाहिए। तो भगवान की सेवा से, भक्तों की सेवा से ये जो धन है इसको भरना चाहिए अपने अकाउंट में। तो इस श्लोक से हम यही मुख्यतः सीखते हैं कि जो भोक्ता राम एकता साम है, जो सभी लोगों के जो मालिक है, वो स्वयं कृष्ण है, और जो साक्षात लक्ष्मी, साक्षात जो लक्ष्मी है, वो वहीं पे रहती है जहाँ भगवान रहते हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी जी की कृपा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक से यही मैंने प्रिपेयर किया था। तो अगर आपको किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद, बहुत सुंदर सारे अपने पॉइंट्स बताए। जैसे आपने बताया कि जैसे लक्ष्मी जी के दो प्रकार के बताए, कि एक मायावी लक्ष्मी और छाया लक्ष्मी, और जो एक्चुअल वास्तविकता में लक्ष्मी है। हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन आता है तो वो छाया भी लक्ष्मी के द्वारा भी हो सकता है, और कभी बार प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि कुछ जो भक्तों के पास धन आता है वो भगवान कृष्ण उनको प्रदान करते हैं, वो शाश्वत रहता है इस प्रकार से। तो अगर किसी का भक्ति में आने के बाद उसको बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो रहा है, उसका ऐश्वर्य बढ़ रहा है, तो कोई तरीका है कि पता लगा सके कि छाया भी लक्ष्मी के द्वारा है अपराधों के कारण नामक, या फिर वास्तविकता में उसको भगवान कृष्ण ऐसा ऐश्वर्य प्रकट कर दे रहे हैं?
अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार में आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर जैसे बताया, जैसे कि अगर वो भगवान की भक्ति को भूल रहे हैं उस धन को प्राप्त करने के बाद, या उसको भक्ति करने से जो धन प्राप्त हो रहा है, अगर वो भगवान की भक्ति को भूल रहा है, भगवान को भूल रहे हैं, या उसके अंदर बहुत गर्व आ रहा है, तो ये वास्तविक कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा ये है कि वो भगवान की भक्ति के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो। और किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दर्शन रोजी ने बताया था, लास्ट कल ही बताया था कि रोजी कह रहे कि भगवान पहली कृपा करते हैं कि उसका धन छीन लेते हैं, तो दूसरी कृपा क्या करते हैं? एक तो एक भगवान केवल धन छीनते हैं, लक्ष्मी नहीं छीनते। दूसरी कृपा यही है कि उसमें अपने भक्तों का संग देते हैं और अपनी भक्ति के प्रति आकर्षित करते हैं, पर उस भक्त का जो इंटेंशन है वो ज्यादा, कि वो धन अगर खो जाने के बाद, चले जाने के बाद किस प्रकार से लेते हैं। कई भक्तों विपत्ति को ही संपत्ति मानते हैं, जब विपत्ति आती है तो उसको संपत्ति के रूप में देखते हैं कि हाँ ये असली धन है मेरा, कि अब विपत्ति आई मैं कृष्ण का और स्मरण कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। मैं खासकर इस गृह सुखमी कृष्ण का स्पेशली धन्यवाद करूँगा। सारा का सारा लेक्चर जो था, सारा का सारा फौजी के द्वारा ही बताया गया, कि इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने सारे के सारे फौजी के द्वारा ही बताए गए। तो आप सही बताऊँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो, या कुछ मैं ज्यादा बोल गया हो, तो उसके लिए मेरी क्षमा कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।